زمانوں کی امنگ، باب نمبر 37، پہلے مبشرین۔ تمام رسول یسوع مسیح کے خاندان کے افراد تھے، اور جب وہ گلیل کے علاقہ میں پیدل ادھر ادھر جاتا آتا تھا، وہ اس کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے تمام مسائل اس کے سامنے پیش کرتے تھے جو انہیں دبا لیتے تھے۔ وہ خدا کے بیٹے کے ساتھ چلتے پھرتے، گفتگو کرتے اور اس کے مشن کے متعلق اس سے سیکھتے تھے۔ نیز اس کی روزانہ ہدایات سے انہوں نے سیکھا کہ کس طرح انسانیت کو فضیلت دی جا سکتی ہے۔ جب یسوع اس بھیڑ کی خدمت کرتا تھا جو اسے گھیرے رکھتی تھی، تو یہ رسول یسوع کا ہاتھ بٹا کر اس کے کام میں آسانی پیدا کرتے تھے۔ وہ بیماروں کو باری باری یسوع کے قدموں میں لاتے اور عوام سے تسلی بخش کلام کرتے۔ وہ ان سامعین کو بھی بغور ذہن میں رکھتے جو یسوع کی تعلیم میں دلچسپی لیتے، ان کے لیے کلام کی وضاحت کرتے اور ان کے روحانی فوائد کے لیے خدمت انجام دیتے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جو کچھ وہ یسوع سے سیکھتے اس کی تعلیم دیتے۔ یوں وہ گہرا تجربہ حاصل کرتے، مگر انہیں اکیلے کام کرنے کا تجربہ حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے ابھی انہیں کافی ہدایات حاصل کرنے اور اپنے اندر صبر اور شفقت پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ یسوع ذاتی طور پر ان کے ساتھ تھا، اس لیے ان کی غلطیاں ان پر عیاں کرتا رہتا تھا۔ جب ضروری ہدایات دے چکا، تو انہیں اپنے نمائندوں کے طور پر خدمت کے لیے بھیجا۔ روح کاہنوں اور فریسیوں کی تعلیم سے متحیر ہو جایا کرتے تھے اور اپنی پریشانی یسوع کے پاس لے کر آتے تھے۔ اس نے روایات اور حکایات کے برعکس الہامی نسخہ جات کی صداقتیں رسولوں کے سامنے پیش کیں۔ یوں اس نے خدا کے کلام میں ان کا ایمان مستحکم کیا، اور بڑی حد تک اس نے ان کو شرع کے معلموں کے خوف اور روایات کی غلامی سے آزادی بخشی۔ ان کی تربیت کے دوران یسوع کا اپنا نمونہ ان کے لیے ہر طرح کی تعلیم سے زیادہ مؤثر تھا، اور جب وہ خدمت کرنے کے لیے اس سے علیحدہ ہوئے، تو انہیں اس کی بتائی ہوئی ہر بات، کلام کرنے کا لب و لہجہ اور دوسری ہدایات یاد آئیں۔ جب کبھی انجیل کے دشمنوں سے ان کا سامنا ہوتا، تو وہ اکثر یسوع کے کلام کو دہراتے جو اس نے ان کے ساتھ رہ کر کیا تھا، اور جب انہوں نے اس کلام کا اثر لوگوں پر دیکھا تو بڑی خوشی منائی۔ یسوع نے 12 رسولوں کو بلا کر گلیل کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں دو دو کر کے بھیجا۔ اس نے کسی کو بھی اکیلا جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ اس نے بھائی کو بھائی کے ساتھ اور دوست کو دوست کے ساتھ روانہ کیا۔ یوں وہ ایک دوسرے کی مدد اور ہمت افزائی کر سکتے تھے، اکٹھے مل کر دعا کر سکتے اور ایک دوسرے کے مشورے سے مستفید ہو سکتے تھے۔ نیز ایک کی قوت اور حوصلہ دوسرے کی کمزوری میں تقویت کا باعث بن جاتی۔ اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے بعد میں اس نے 70 کو منادی کی مدد کرے۔ آج کے زمانہ میں بھی اگر یسوع مسیح کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو اپنایا جائے، تو منادی کا کام زیادہ کامرانیاں حاصل کرے گا۔
جو منادی یوحنا بپتسمہ دینے والا اور خود یسوع مسیح نے کی، اس کا پرچار شاگردوں نے کیا، یعنی خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ انہیں لازمن اس متنازعہ فیہ مسئلہ کا سامنا تھا کہ آیا یسوع ناصری ہی موعودہ مسیح ہے یا نہیں۔ تاہم انہیں اس کے نام وہی کام کرنے تھے جو ہو اپنے رحم میں کیا کرتا تھا۔ اس نے انہیں یہ اختیار دے کر بھیجا، بدروحوں کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ تم نے مفت پایا، مفت دینا۔ اپنی خدمت کے دوران یسوع نے تعلیم دینے کی نسبت زیادہ وقت بیماروں کو شفا دینے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کے معجزات اس کے اس کلام کی صداقت کے گواہ تھے کہ وہ ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ اس کی راست بازی اس کے آگے آگے چلتی تھی، اور خداوند کا جلال پیچھے سے اس پر سایہ افگن رہتا تھا۔ جہاں کہیں وہ گیا، اپس کے رحم کی خوشخبری اس کے پہنچنے سے پیشتر وہاں جا پہنچی۔ جہاں کہیں وہ گیا، وہاں اس کے رحم کے چرچے پھیل گئے، بیماروں نے شفا پائی۔ ایسے مریضوں کو بھیڑ روک روک کر ان عجیب کاموں کے بارے سنتی جو خداوند خدا نے ان کے لیے کیے تھے۔ بہت تیرے ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار اس کی آواز اپنے کانوں سے سنی تھی، کیونکہ جنم کے بہرے تھے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے پہلی بار اپنی زبان سے اس کا نام پکارا تھا، क्योंकि वो जन्म के गूंगे थे, और बाज उन मरीजों में ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से यसु का मुबारक चेहरा देखा था, क्योंकि वो जन्म के अंधे थे। क्यों ना इस तरह के तमाम लोग यसु को प्यार करते? वो जिंदगी और मोहब्बत का मंबा था, जिस शहर गांव या कस्बे से गुजरा खुशियां बांटता गया, मुर्दों को जिंदगी और बीमारों को शिफा बख्शता चला गया। खुदा के कारगुजारों को भी उसी तरह खिदमत अंजाम देना है जैसे वो अंजाम देता था। हमें भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा, बीमारों और दुखियों को आराम पहुंचाना है। जो बीदिल और मायूस हो चुके हैं उन्हें हिम्मत और उम्मीद दिलाना है। तभी हम इस वादा के मालिक ठहरेंगे। तब तेरी रोशनी की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हर अव्वल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंदवल होगा। यसाया 8:58। मसीह यसु की बेलौस मोहब्बत ने अदालत और तलवार से भी ज्यादा बदकारों की इसलाह का काम अंजाम दिया। तलवार और अदालत कानून तोड़ने वालों के लिए जरूरी तो हैं, मगर मोहब्बत से मामूर मिशनरी उनसे भी बढ़कर काम कर सकता है। अक्सर तंबी करने से दिल सख्त हो जाता है, मगर यसु की मोहब्बत के जेरे असर यही दिल नर्म हो जाता है। मसीही मिशनरी सिर्फ जिस्मानी तकालीफ से ही आराम नहीं बख्शता, बल्कि गुनाह के मरीजों को अजीम तबीब के कदमों में ले आता है, जो गुनाह के मरीज की रूह को शिफा बख्शता है। खुदावन चाहता है कि उसके खादिमों के जरिए बीमार, बदनसीब और इब्लीस के जाल में फंसे हुए लोग उसकी आवाज सुने और ऐसा इत्मीनान पाएं जो दुनिया नहीं दे सकती। रसूलों को पहली बार बतौर मिशनरी सिर्फ इसराइल की खोई भेड़ों के पास जाने का हुक्म था। अगर वो पहली बार गैर कौमों और सामरियों में मनादी करते तो यकीनन यहूदियों पर अपना असर खो बैठते, फरीसी उनके मुखालिफ हो जाते और उनके काम में रकावट पैदा हो जाती। रसूल अभी ये भी नहीं समझते थे कि खुशखबरी के इस कलाम को दुनिया भर में जाना है, लिहाजा जब तक वो खुद इस सच्चाई को अपने दिल में ना उतारने, वो गैर कौमों के लिए क्यों कर काम कर सकते थे? क्योंकि वो उसके लिए पूरी तरह तैयार न थे। और अगर यहूदी खुशखबरी को कबूल कर लेते तो खुदावन उन्हें गैर कौमों में खुशखबरी सुनाने के लिए भेज सकता था। यही वजह थी कि यहूदियों को पहले खुशखबरी सुनाई गई। मसीह के बाग में हर जगह जहां मजदूर काम करने गए उन्हें ऐसी रूहें मिले जो सच्चाई की भूखी और प्यासी थीं। अब वक्त आ गया था कि चाहने वाले दिलों में उसकी मोहब्बत की खुशखबरी पहुंचाई जाए। उन सब रूहों के पास शागिर्दों को बतौर मसीह के नुमाइंदगान पहुंचना था, नीज ईमानदारों को उन्हें अपने रूहानी असातिज़ा के तौर कबूल करना था। और यसू के आसमान पर सूद फरमाने से पेशतर उनको मालूम होना चाहिए था कि यसू ने उन्हें रहनुमा के बगैर नहीं छोड़ा। शागिर्दों को पहली बार सिर्फ उन जगहों पर ही जाना था जहां जहां यसू पहले जा चुका था और जहां उसके कुछ दोस्त भी थे। उनकी सफर की तैयारी बड़ी सादा सी थी। उन्हें कोई ऐसी चीज साथ न ले जाना थी जो उनकी तवज्जो को असल काम से हटा दे या दुश्मनों को भड़का दे, और ये इसलिए ताकि आइंदा वहां उन पर काम के दरवाजे बंद न हो जाए। उन्हें मजहबी मुअल्लिमों का सा लिबास भी न पहनना था, न कोई ऐसा जाहिरी निशान अपनाना था जिसकी वजह से वो आम लोगों से मुख्तलिफ नजर आएं, और न ही उन्हें हैकल में दाखिल होकर लोगों को इबादत के लिए बुलाना था, बल्कि उन्हें घर घर जाकर मनादी करने का हुक्म था। उन्हें हरगिज वक्त जाया नहीं करना था, बल्कि जो लायक पाए जाते खाना भी सिर्फ उनके हाथ से खाने का हुक्म था। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। इसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। लूका 5:10-7। उनके साथ मिलकर खुदा का कलाम पढ़ो और उसकी हमद के मिलकर गीत गाओ, तो वो घर आपकी दुआओं से बरकत पाएगा। इन शागिर्दों को खुशखबरी फैलाना और अपने आका की आमद के लिए राह तैयार करना था। उन्हें अबदी जिंदगी का पैगाम सुनाना था जिस पर हर इंसान की जिंदगी का इन्हिसार है। इसे कबूल करना या रद्द करना उनकी अपनी सवाबदीद थी। اس پیغام کی حرمت اور سنجیدگی کے پیش نظر یسوع نے فرمایا، لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازوں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں کو لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں، مگر یہ
جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔
میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی نگاہ مستقبل میں چلی گئی۔ اس نے اس وسیع کھیت کو دیکھا جس میں یسوع کے شاگرد اس کی موت کے بعد گواہی دینے کو تھے۔ اس نے اپنی آمد ثانی تک تمام خادموں کو نبیانہ نگاہ سے دیکھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں پر ظاہر کیا کہ انہیں کس طرح کی کشمکش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ ان پر جنت کا طریقہ اور نوعیت آشکارا کرتا ہے۔ وہ ان پر یہ بھی آشکارا کرتا ہے کہ تم پر کون سی تکالیف متوقع ہیں۔ ان سے خود انکاری کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ دشمن سے غافل نہ رہیں، کیونکہ تمہاری جنگ خون اور گوشت کے خلاف نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ افسیوں 12:6۔ انہیں مافوق الفطرت طاقتوں کا سامنا تھا۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ تمہاری مدد کو بھی مافوق الفطرت قوتیں یعنی پاک فرشتے، روح القدس اور خود خدا وند آئے گا۔ آسمان کی تمام ذی شعور ہستیاں اس فوج میں شامل ہیں۔ روح القدس رب الافواج کی نمائندگی کرتی ہے جو براہ راست آسمان سے آ کر ہمارے حق میں جنگ لڑتی ہے۔ خواہ ہماری کمزوریاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، جو خداوند خدا کو شکستہ دل کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں ان پر خداوند کا فضل ہوتا ہے۔ خداوند کی قدرت ان سب کے لیے ہے جو اس میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ دیکھو، میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ متی 16:10۔ خداوند یسوع مسیح نے سچائی کے کلام کو خود بھی کبھی درستی سے نہیں بلکہ محبت کی روح سے پیش کیا۔ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے دوران خداوند مسیح نے بڑی حکمت، مردم شناسی، دلجوئی اور خاطر و مدارت کا مظاہرہ کیا۔ کسی ذی حس روح کو رنجیدہ کیا، نہ کسی کے ساتھ بے ادبی اور ترش کلامی کی، بلکہ اس نے کسی زود رنج روح کو بھی رنجیدہ نہ کیا۔ کسی کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کبھی اس نے کسی کو ڈانٹ نہ پلائی۔ بے شک اس نے ریاکاری، کم اعتقادی کی سرزنش کی، مگر وہ بھی محبت کی روح سے۔ جب وہ کسی کو جھڑکتا تھا تو دکھ سے اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آواز بھر ہو جاتی تھی۔ وہ یروشلم شہر پر رویا جسے وہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اس نے راہ حق اور زندگی کو ٹھکرا دیا تھا۔ بے شک یروشلم کے باشندوں نے اسے رد کر دیا تھا، مگر اسے ان کے لیے دلی محبت تھی۔ ان کے غم میں اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ یروشلم کا ہر بشر اس کی نظر میں گراں قدر تھا۔ ذات الہی رکھتے ہوئے بھی وہ خدا کے خاندان کے ہر بشر کی قدر کرتا تھا۔ اس نے ہر انسان میں گناہ میں گرتی ہوئی روح کو دیکھا، جس کو بچانا ہی اس کا مشن تھا۔ یسوع مسیح کے خادموں کو بھی اپنے دل کے ارادوں کی مطابقت میں کام نہیں کرنا، بلکہ ان کا زندہ رابطہ خداوند خدا کے ساتھ ہونا لازم ہے،
مبادہ وہ خود غرض ہو کر بھول جائیں اور ان کے منہ سے نامناسب کلام نکلے۔ جو مرجھائے پودوں کے لیے بارش کا کام نہ دے، یہی ابلیس چاہتا ہے کہ وہ کریں، کیونکہ یہ اس کے کامیاب حربے ہیں۔ یہی حیوان غضبناک ہوتا اور بھائیوں پر الزام لگاتا ہے، مگر خدا کے خادموں کو خدا کی ہی نمائندگی کرنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے خادم اس صداقت سے انحراف نہ کرے جو اس سے متعلق ہے۔ جس قوت سے وہ اس بدی پر غالب آ سکتے ہیں وہ صرف یسوع سے حاصل ہوتی ہے۔ خداوند کا جلال ان کی قوت ہے۔ انہیں صرف اپس کی پاکیزگی پر نگاہ کرنا ہے، پھر وہ نہایت ہی مؤثر انداز میں خداوند کی خدمت اور ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جنہیں صداقت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، انہیں صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ ابلیس اور اس کے حواریوں سے بھی دو بدو ہونا ہے۔ انہیں خداوند یسوع مسیح کا یہ کلام یاد ہونا چاہیے، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ لوقا 3:10۔
उन्हें खुदावन की मोहब्बत में इत्मीनान हासिल हुआ, और जब लोग अपने पर लानतान करेंगे उस वक्त भी वो बेदिल ना होंगे, क्योंकि खुदावन उनको अपनी जर्रा बख्तर से मलबूस करेगा जो उन्हें भेड़ियों से महफूज रखेगी। तवातुर से हिदायत करते हुए खुदावन मसीह ने अपने शागिर्दों से फरमाया, आदमियों से खबरदार रहो। उन्हें ऐसे आदमियों में एतमाद ना रखने के लिए फरमाया गया जो खुदा को नहीं जानते। अगर ऐसा करेंगे तो इब्लीस के हवारियों को फायदा पहुंचेगा। इंसान की अपनी तजावीज अक्सर खुदा की तजाइस के बरक्स होती हैं। जो खुदा की हैकल तामीर करते हैं, चाहिए कि उसके बताए हुए नमूना के मुताबिक तामीर करे जो खुदावन ने पहाड़ पर दिखाया था। जब खुदावन के खादिम उन लोगों के मशवरे पर चलते हैं जो रूहुल कुदुस की हिदायत के मुताबिक नहीं चलते, तो खुदावन खुदा की और उसकी इंजील की तहकीर व तकफीर होती है। दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक बेवकूफ़ी के मुतरादिफ है। जो लोग दुनवी फहम व फरासत पर तकिया करते हैं वो ज़रूर धोखा खाएंगे, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। मत्ती 16:10-18।
ईज़ा रसानी से नूर चमकेगा। खुदा के खुदाम इख्तियार वालों के सामने पेश किए जाएंगे, ताकि ये दुनियादार लोग भी इंजील की मनादी सुन सकें। ऐसे लोगों तक सच्चाई गलत रन में पहुंचाई गई थी। उन्होंने शागिर्दों के खिलाफ झूठे इल्जाम सुन रखे थे। चुनाचे जिन ईमानदारों को उन इख्तियार वालों के हुजूर तफ्तीश के लिए लाया जाता था, वही उनको इंजील की खुशखबरी सुनाने का वाहिद जरिया होते थे। हाकिम वक्त उनसे सवाल पूछते थे, चुनाचे उनके जवाब में ईमानदारों को अपने ईमान की गवाही देना होती थी। यूं गैर कौमें और इख्तियार वाले सदाकत से वाकिफ होते जाते थे। अगर कोई हंगामी सूरत पेश आ जाए तो खुदावन का फजल अपने खादिमों के साथ होगा, लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। मत्ती 19:10-20। जब खुदावन का रूह जहनों को रोशन करता है तो इलाही कुव्वत सदाकतों को नहायत ही मौसर अंदाज में पेश कर देती है। वो जो सच्चाई को रद्द करते हैं, शागिर्दों पर इल्ज़ाम लगाते और डराते धमकाते हैं, इसके बावजूद खुदावन के खादिम दुख तकलीफ हत्ती के मौत में भी यसू का नमूना अपनाए रखते हैं, और यही चीज यसू मसीह और इब्लीस के नुमाइंदों में बायस इम्तियाज है। इसी वजह से अवाम और इख्तियार वालों के सामने निजात दहिंदा की बुजुर्गी होगी। उस वक्त तक शागिर्दों को शहादत पाने के लिए हौसला और जुरत की बख्शिश नसीब ना हुई जब तक उस फजल की उनको जरूरत ना पड़ी, और जब हकीकत में उनको जरूरत थी, यसू ने अपना वादा पूरा किया। जब पतरस और यूहन्ना ने सनहेड्रन नेशनल काउंसिल के सामने यसू की गवाही दी तो मालूम किया कि ये उन पढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यस्सू के साथ रहे हैं। आमाल 13:4। बल्कि स्टीफनेस के बारे लिखा है, और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। आमाल 15:8। और वो उस दानाई और रूह का जिस वे वो कलाम करता था मुकाबला ना कर सके। आमाल 10:8।
और पौलुस रसूल का कहना है कि मेरी जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें उसका हिसाब देना ना पड़े, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरे मारफत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन ले, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। 2 तीमुथियुस 16:4-17।
खुदा के खादिमों को अपनी आजमाइशों के वक्त पहले से कोई तकरीर तैयार करके रखने की जरूरत ना थी, बल्कि जो कुछ उन्हें कहना था वो हर रोज खुदा के कलाम से अपने जहन में जमा करते रहते थे। इसी तरह दुआ के जरिए उनका ईमान मुस्तहकम होता रहता था, और जब उनकी पेशी होती थी तो रूहुल कुदस उन सच्चाइयों को उन्हें याद दिलाता था जिनकी उन्हें जरूरत हुआ करती थी। खुदावन मसीह ने फरमाया,
मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। इसके बावजूद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि गैर जरूरी तौर पर मुसीबतों को दावत ना दो। वो खुद एक जगह से दूसरे जगह चला जाया करता था जब दुश्मन उसकी जान के खाहां होते थे। जब नासरत के लोगों ने उसे रद्द करके उसकी जान लेना चाही तो वो कुफर नहूम को चला गया। वहां लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। लूका 32:4। लिहाजा उसके शागिर्दों को भी ईजा रसानियों से डरना या घबराना न था, बल्कि खतरात वाली जगहों को छोड़कर महफूज जगहों में रूहों की निजात के लिए खुदा का कलाम फैलाना था। नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। आसमानी शहजादे को बालस बोल कहा गया। उसके शागिर्दों को भी गलत रंग में पेश किया जा सकता है, खा कैसा ही खतरा दरपेश क्यों ना हो। खुदावन मसीह के पैरोकारों को उसूल से इन्हराफ नहीं करना चाहिए। छुप कर तो रह नहीं सकते, बल्कि खुदा ने उनको पहरेदार मुकर्रर किया है ताकि बनी नौ इंसान को खतरे से आगाह करें। पस जो सच्चाइयां यीशु से पाई हैं, दुनिया को मुफ्त और बरमला सुखाना है। यीशु मसीह ने फरमाया, जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। मत्ती 27:10। यीशु ने खुद महज अमन की खातिर उसूलों पर सौदाबाजी न की। तमाम नस्ल इंसानी के लिए उसका जी भर आता था, मगर वो उनके गुनाहों में कभी भी शामिल व शरीक न हुआ। जब वो अपने गुनाहों में मजीद गलतां होकर अपनी रूह को बर्बाद करने पर तिल जाते तो वो उनकी दोस्ती का पास रखते हुए उनके मामला में बिल्कुल लपकुशाई न करता। वो उस रूह को जिसे उसने अपने खून से खरीद रखा था अबदी जिंदगी के चुनाव का हक बख्शता। अबदी जिंदगी चुनने के लिए उसे मजबूर न करता। खुदावन के खादिमों के सुपुर्द भी ऐसा ही काम है, इसलिए वो खबरदार रहें मबादा उनके जरिए सच्चाई मगलूब हो जाए। उन्हें तो उन बातों के तालिब रहना है जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की होती है। रोमियो 19:14। क्योंकि उसूलों पर समझौता करने से कभी अमन नहीं हो सकता। नीज मुखालिफत खरीदे बगैर कोई भी उसूलों की पाबंदी नहीं कर सकता। मसीहियत जिसमें रूहानियत है, लाजिम है कि नाफरमानी के फर्जंद उसकी मुखालिफत करें। मगर यीशु ने शागिर्दों को कहा, जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। मत्ती 28:10। जो खुदावन से वफादार हैं उन्हें इंसानी इख्तियार और इबलीस की दुश्मनी की फिक्र ना करना चाहिए। मसीह यस्सू में अबदी जिंदगी पाई जाती है। अगर उन्हें डरना चाहिए तो सिर्फ इस बात से कि मुबादा उनकी वजह से सच्चाई मगलूब हो जाए। इबलीस का तो यही काम है कि इंसान के दिल को शक को शुभात से भर दे। वो लोगों को खुदा के खिलाफ उकसाता है कि वो ये मान ले कि खुदा जाबिर मुनसिफ है। वो उन्हें गुनाह करने पर उभारता है, फिर वो उनको एहसास दिलाता है कि वो सख्त नजिस हैं और खुदा इतना पाकीजा है कि वो उसके हुजूर खड़े भी नहीं हो सकते। खुदावंद खुदा ये सब कुछ समझता है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को खुदावंद की रहमदिली और हमदर्दी के बारे बताया, जो उन्हें बवक्ते जरूरत और बवक्ते कमजोरी दरकार है। किताबे मुकद्दस से जाहिर है कि खुदावंद के हुजूर हजारों हजार और लाखों लाख फरिश्ते उसकी मर्जी को बजा लाने के लिए हर वक्त तैयार खड़े रहते हैं। उसकी आंखें अपनी तमाम रियाया पर हैं। कुल कायनात की निस्बत हमारी धरती एक छोटे से जर्रे के मुशाबे है, मगर उस धरती के बासियों को बचाने के लिए खुदावन खुदा ने अपने उकलूते बेटे को कुर्बान होने के लिए दे दिया, जिससे हमें मालूम होता है कि वो हम गुनहगार इंसानों में कितनी दिलचस्पी रखता है। खुदावन खुदा अपने तख्त से हम दुखियों की फरियाद सुनने के लिए अपना कान हमारी तरफ झुकाए रखता है। हर मुखलिस दुआ का जवाब देते हुए वो फरमाया है कि मैं यहां हूं। वो कुचले हुओं को बहाल करता है। हमारे दुखों से उसे रंज पहुंचता है और उसके लिए हमारे करीब ही रहते हैं,
हत्ता कि एक चिड़िया भी हमारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। जो कुछ खुदा की पनाह में है, इबलीस उसे नफरत अंगेज निगाहों से देखता है। वो खुदा की सनदगरी को मस्ख करने पर तुला हुआ है। हत्ता के बेजबान जानवरों को हलाक करके भी उसे राहत मिलती है। ये तो खुदा की हिफाजत ही है जिसने परिंदों को बचाए रखा है, जो अपनी रागनियों से हमें मसरूर करते हैं। इसीलिए वो चिड़ियों की भी फिक्र करता है। वो फरमाता है,
डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम आदमियों के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं भी खुदा और उसके पाक फरिश्तों के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। तुम मेरे गवाह हो और मेरा फजल तुम्हारे जरिए दुनिया को शिफा बख्शेगा और मैं तुम्हारा आसमान पर नुमाइंदा हूंगा। खुदावन खुदा तुम्हारी नाराजगी नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हें मेरी कामलियत में मलबूस पाता है। मेरे जरिया से तमाम आसमानी बरकात आपको मिलेंगी। जो यस्सू का इकरार करते हैं, लाजिम है कि यस्सू उनमें सुकूनत करे, क्योंकि जो कुछ किसी के पास है ही नहीं, वो दूसरों को क्यों कर दे सकता है। शागिर्द तालीम को बेशक अच्छी तरह जानते और बयान कर सकते थे, वो यस्सू की तालीम को भी दोहरा सकते थे, लेकिन जब तक उनमें यस्सू की मोहब्बत और हलीमी ना पाई जाती, वो क्यों कर उसका इकरार कर सकते थे। यस्सू मसीह की रूह के मुतजाद रूह असल में यस्सू का इनकार है। हम बेवकूफी, बदी और अहमकाना कलाम करके यस्सू का इनकार कर सकते हैं। इसी तरह गुनाह को जारी रखते हुए और बेहुदा गुफ्तगु और जालिमाना ना अमल दिखाकर भी उसका इनकार कर सकते हैं। मगर खबरदार, यस्सू ने पेशतर ही आगाह कर दिया है कि जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। मत्ती 33:10। खुदावंद मसीह ने शागिर्दों को जता दिया कि इंजील की खुशखबरी के खिलाफ दुश्मनी जारी रहेगी, और कभी ये उम्मीद न करना कि यह दुश्मनी मौकूफ हो जाएगी। ये न समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। सुलह कराने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूं। मत्ती 34:10। ये इंजील की मनादी के नतीजा में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि मुखालफत के नतीजा में, और ये जंग या लड़ाई दोस्त व अहबाब और घर वालों के दरमियान पाई जाएगी। इसीलिए खुदावन ने जता दिया, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। मत्ती 36:10-38। खुदावंद यस्सू मसीह के खुदाम को का मिशन बड़ी इज्जत का हामिल है। खुदावंद ने फरमाया, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। यस्सू मसीह के लिए छोटी से छोटी खिदमत भी बगैर अजर के नहीं, और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। मत्ती 42:10।
यू खुदावन मसीह की हिदायत, जो वो 12 शागिर्दों को दे रहा था, इख्तिताम पजीर हुई। चुनाचे यीशु के नाम में वो 12 इंजील की मनादी को निकले, और उन्होंने भी वही खिदमत अंजाम दी जो उनके आका ने अंजा दी थी, यानी गरीबों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई, अंधों को बीनाई और कचले हों को आजाद किया। लूका 18:4-19।